हेलो, दिस इज़ फ्रॉम इंडियन साइबर आर्मी। हाउ कैन आई हेल्प यू?
मैं दिल्ली से सटे नोएडा के पास इंडियन साइबर आर्मी के दफ्तर आई हूँ।
मेरे पास रात के 10:30 बजे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, सर एक इमरजेंसी है एंड आपको रात को काम करना पड़ेगा।
किसले चौधरी खुद को एथिकल हैकर यानी नैतिक काम या वजह के लिए कंप्यूटर हैक करने वाला बताते हैं। बिहार में पले बढ़े किसले इंडियन साइबर आर्मी के संस्थापक हैं। यहाँ एक हेल्पलाइन के जरिए उनकी टीम आम लोगों को तकनीकी मदद और दिल्ली पुलिस समेत साइबर क्राइम की तहकीकात करने वाली भारतीय एजेंसियों के साथ काम करती है।
आईओ का कहना था कि सर एक वीडियो है जो लगातार कई अराउंड 40 पोर्टल्स पे अपलोड किए गए हैं और उनको वहाँ से रिमूव करवाना है। मैंने बोला कि जनरल जो टाइमिंग है वो लगेगा ही, आप एक आईडी प्रूफ मुझे सेंड कर दीजिए एंड वीडियो के URS। तो आईओ ने बोला सर आप विक्टिम से बात कर लो। मैंने बोला ठीक है। जैसे ही उन्होंने इसको फ़ोन दिया पूजा को, शी वॉज लिटरली क्राइंग एंड इतनी बुरी हालत हो रखी थी कि मुझे खुद उठ के थाने जाना पड़ा।
जैसे हमने पहले भाग में चर्चा की कि पिछले कुछ सालों में यौन हिंसा, बलात्कार के वीडियो और बिना लड़की की सहमति के उसके अंतरंग लम्हों के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया ऐप्स और स्मार्टफोन्स के जरिए बांटे और देखे जा रहे हैं।
मेरे फ्रेंड्स से मुझे पता चली थी, उन लोगों ने ये वीडियो देखी थी तब मुझे पता चला था। तो वो वैसे नेट से डली थी, उसके बाद वो व्हाट्सएप वगैरह से शेयर हुई और मतलब बहुत ज़्यादा फैल गई।
23 साल की पूजा दिल्ली के एक पिछड़े इलाके में रहती है। कलफदार सफ़ेद सलवार कुर्ता पहने वो मेरे ठीक सामने बैठी तो, लेकिन मुझसे आंखें नहीं मिलाती, मानो शून्य में देखते हुए अपनी बात कह रही हो। उसके स्पष्ट जवाब और लहजा एक अलग ही छवि बनाते हैं, किसलय की घबराई पूजा से बिल्कुल उलट। यहाँ तक का सफ़र मुश्किल रहा होगा, पर पूजा बिना लड़खड़ाए अपनी बात कहती है।
हमारे जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो एक बहुत बड़ी बात थी, एक मरने वाली बात थी। लोग इस चीज़ को समझते नहीं है, मतलब उनके सामने जो रखा जाता है वो सिर्फ उसी चीज़ को समझते हैं, उसके पीछे का सच वो जानना नहीं चाहते क्योंकि भेड़ चाल चलने की आदत होती है। तो बहुत कुछ फेस किया।
पूजा का परिवार और ज्यादातर दोस्त अब उनके संपर्क में नहीं है और पूजा के मुताबिक पुलिस भी कुछ खास मददगार नहीं थी।
पुलिस सपोर्ट नहीं करती है, वो सबसे पहले लड़कियों पे उंगली उठा दे। एक तो लड़की वैसे ही मेंटली प्रेशर में होती है, घर के प्रेशर में होती है, खुद उसको समझ में नहीं आता, समाज के प्रेशर में होती है, उसके बाद पुलिस। मैंने भी सहा, ऐसा नहीं है मेरे साथ नहीं हुआ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा, ये होगा, तुमने खुद करा होगा, पैसे खाने के लिए, मतलब बहुत सी बातें उठाते हैं।
किसलय वेबसाइट्स के प्राइवेसी यानी निजता के नियमों की मदद लेकर वीडियो हटवाते हैं, क्योंकि ये वीडियो पीड़िता की सहमति के बिना अपलोड किए गए हैं और इसलिए उनकी निजता का हनन है। लेकिन इंटरनेट से कुछ भी हमेशा के लिए हटाना लगभग नामुमकिन है, खास तौर पर जब उन्हें देखने को इच्छुक लोगों की तादाद इतनी ज्यादा है।
परमानेंट क्लोजर साइबर क्राइम में मानना थोड़ा सा मुश्किल है कि एक सिचुएशन है कि मैंने अपलोड किया किसी का वीडियो, अब वो वीडियो किसी ने देखा, उसको डाउनलोड किया एंड देन उसने सर आगे फॉरवर्ड किया। नाउ वी डोंट नो ना कि किस किस के मोबाइल में है एंड किस किस के इस पे है, सिस्टम पे है। दूसरा, जो वीडियो के थ्रू अर्निंग का जो मेथड आया रिसेंट डेज में, जो यूट्यूब के थ्रू हम अर्न कर सकते हैं, तो पॉर्न के थ्रू अर्निंग का मेथड आया। अब वो उसके पीछे जो अभी रिसेंट अभी पूजा भी बोल रही थी कि उसको सर्कुलेट करने का नुकसान क्या है, ये वो नहीं देखते।
पूजा के मामले में किसलय आईपी एड्रेस तो निकलवा पाए, लेकिन पुलिस ने अब भी उसके पीछे जो आदमी है उसकी पहचान कर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है। किसलय के मुताबिक इसकी एक बड़ी वजह पुलिस के पास आने वाली शिकायतों की बड़ी तादाद है। एक अफसर एक वक्त पर 200 केस देख रहे होते हैं।
कई एक ऐसे ऑफिसर्स से मैं मिला हूँ जो चाहते तो हैं कि मैं साइबर क्राइम सॉल्व करूँ, लेकिन ना प्रॉपर ट्रेनिंग है, ना सिस्टम के ऐसे रूल्स हैं कि वो ऑफिसर खुद से उसको सॉल्व कर सके।
और किसलय के मुताबिक इसी वजह से अफसर ठीक से सबूत नहीं जुटा पाते और आखिर में आरोपी बरी हो जाते हैं। हमने दिल्ली पुलिस और कानून मंत्रालय से जवाब मांगने के लिए संपर्क किया, पर कई बार कोशिश करने के बावजूद उन्होंने बात नहीं की। शेयर होने के बाद जब वीडियो हटाना इतना मुश्किल है तो कई लोगों का मानना है कि पॉर्न को ही बैन कर देना चाहिए। भारत में पॉर्न निजी तौर पर देखना तो कानूनी है, लेकिन पॉन बनाना या बांटना गैर कानूनी। बनारस के रहने वाले सुरेश शुक्ला तकनीकी विशेषज्ञ हैं। उन्होंने एक ऐप बनाया है फिल्टरनेट।
That's when I decided to make a filter for Indian mindset, Indian cultural sensitivity and for Indian price.
ये पॉन सामग्री को फिल्टर यानी छान देता है। तो साल 2015 में जब सुरेश ने सुना कि भारत सरकार का कहना है कि पॉन वेबसाइट्स को बैन करना तकनीकी तौर पर मुमकिन नहीं, तो उन्हें लगा उन्हें मदद करनी चाहिए। सुरेश शुक्ला ने 857 वेबसाइट्स की एक सूची बनाई और सुप्रीम कोर्ट को दी। जब पॉन पर सरकारी बैन का फैसला आया तब इसी सूची को आधार बनाया गया, पर लोगों के विरोध के बाद ये बैन चंद ही दिनों में पलट दिया गया। उसकी एक वजह थी कि बैन के लिए चुनी गई वेबसाइट्स का आधार सार्वजनिक नहीं किया गया था।
वन क्राइटेरिया इज हाई ट्रैफिक। द हाईएस्ट विजिटेड साइट्स आर श्योरली पार्ट ऑफ दैट 857। सो इट हैज
857 वेबसाइट्स की सूची में पहला आधार था उन वेबसाइट्स को चुनना जिनको सबसे ज्यादा लोग इस्तेमाल करते थे, पर दूसरी कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी थीं जिन्हें और देशों से लोग देखने जाते थे।
सूची जैसे भी बनाई गई हो, इसका इस्तेमाल काफी संजीदगी से हो रहा है। जब इसी साल एक बार फिर पॉन बैन का आदेश दिया गया, कुछ लड़कों के कथित तौर पर अपने मोबाइल में पॉन देखकर एक लड़की का सामूहिक बलात्कार करने की खबर का संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि ये औरतों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए जरूरी है कि पॉन को बैन कर दिया जाए। लड़के गिरफ्तार हो गए और मामले की तहकीकात जारी है। आज करीब 830 वेबसाइट पर बैन लग चुका है।
वी आर इम्प्लीमेंटिंग एनी कोर्ट ऑर्डर।
राजेश छारिया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। यही कंपनियां सरकार के बैन को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं। राजेश कहते हैं कि वो बैन लागू कर रहे हैं, लेकिन उससे आगे बढ़कर हिंसक सामग्री वाली अन्य वेबसाइट्स की पहचान करना उनका काम नहीं है।
डोंट पुट द ओनस ऑफ पुलिसिंग द वेबसाइट्स ऑन अस, अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि दैट देयर इज अ डिफरेंस।
हम वेबसाइट्स की तहकीकात नहीं कर सकते, क्योंकि पोर्नोग्राफी की परिभाषा भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने से बदल जाती है। बड़े शहर में बिकनी एक सामान्य चीज है, पर गांव में अस्वीकार्य है।
कैसी सामग्री पॉन मानी जाए, ये एक चुनौती है। दूसरी चुनौती उस सूची को बढ़ाते रहना, क्योंकि बैन में शामिल की गई एक बड़ी पॉन वेबसाइट ने कुछ ही दिनों में एक और नाम से वेबसाइट बना ली थी। वैसे भी राजेश छारिया के मुताबिक बैन से बहुत कम ही हासिल होगा, खासतौर पर तब जब बहुत सारी सामग्री पॉन वेबसाइट से नहीं बल्कि सोशल मीडिया साइट्स के जरिए आपस में बांटी जा रही है।
I have suggested that you want that the child pornographic should be blocked. What is the best media?
आजकल पॉर्न बच्चों के खिलाफ हिंसा और यौन हिंसा, ये सब वीडियो कंप्यूटर पर नहीं मोबाइल पर देखे जा रहे हैं। हमारा कहना है कि अगर ये सब रोकना है तो व्हाट्सएप को बैन कर दीजिए, पर देश में इतनी लोकप्रिय ऐप को बंद करना बहुत मुश्किल है।
व्हाट्सएप की लोकप्रियता और उसका ऐसी सामग्री बांटने के लिए इस्तेमाल को नकारा नहीं जा सकता, बल्कि उसका असर खतरनाक ही नहीं जानलेवा तक हो सकता है। कंपनी की आलोचना हुई है कि वो इस समस्या से निपटने के लिए उपयुक्त कदम नहीं उठा रही। हमने जब व्हाट्सएप से जवाब मांगा तो उन्होंने हमें ये लिखित बयान भेजा।
व्हाट्सएप भारत में अपने उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित है। बलात्कार के वीडियो और बच्चों की पोर्नोग्राफी के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पर कोई जगह नहीं है। व्हाट्सएप ने करोड़ों लोगों के लिए निजी बातचीत के लिए एक भरोसेमंद जगह दी है, लेकिन दुखद बात है कि हमारी सेवा का इस्तेमाल हानिकारक सामग्री का प्रचार करने के लिए हो रहा है। इसीलिए हमने इस तरह की समस्याओं की शिकायत करने की आसान प्रक्रिया बनाई है, ताकि हम अकाउंट बैन करने समेत उचित कार्रवाई कर सकें। अपराध की तहकीकात के मकसद से भारत की कानून लागू करने वाली एजेंसियों की ओर से जानकारी की वाजिब कानूनी दरखास्त को भी हम मानते हैं।
जाहिर है पॉन पर बैन ही इस समस्या का हल नहीं है। कई लोगों का मानना है कि जरूरत है लैंगिकता पर सार्वजनिक बातचीत में क्रांतिकारी बदलाव की। पोर्नोग्राफी भारत के लिए नई नहीं है। कामसूत्र और खजुराहो में कामुकता का खूबसूरत उल्लेख है। आधुनिक दौर में ब्लू फिल्म और सॉफ्ट पॉर्न फिल्में भी देखी जाती रही हैं, पहले VHS, फिर DVD और सिनेमा हॉल में भी। मैं दिल्ली में अपने गाइड आदित्य के साथ आई हूँ, यहाँ हाल ही में खुले मैडम टूसो में। मैडम टूसो में नामी गिरामी हस्तियों की वैक्स की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। मेरे गाइड आदित्य गौतम के साथ मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ भारत में गूगल पर सबसे ज्यादा ढूंढी जाने वाली सनी लियोन की प्रतिमा।
हम खड़े हैं इंडिया की सबसे ज़्यादा गूगल्ड पर्सनालिटी की वैक्स स्टैचू के सामने, सनी लियोन। सनी लियोन की वैक्स स्टैचू इस म्यूज़ियम में सबसे डिफरेंट है। ये बहुत ही इरोटिक है और बहुत ही सेक्सी बिकिनी पहनी हुई है और हाई हील्स हैं।
सनी लियोन अब बॉलीवुड में अदाकारा हैं, लेकिन उससे पहले वो अमरीका में पॉर्न फिल्मों में अभिनय करती थी।
मैंने एक बार एक आदमी का इंटरव्यू देखा था जो सनी लियोन की कोई मूवी देख के बाहर निकला था और एक रिव्यू दे रहा था, तो यही कह रहा था उसको सनी लियोन की मूवीज़ इसलिए पसंद है क्योंकि वो एक लौती एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनकी वो मूवी देख के घर जा सकता है और फिर उनकी सेक्स वीडियोज़ देख सकता है, उनकी पॉर्न देख सकता है। सो सनी लियोन हमारे देश में जो सेक्स को लेके दोगुलापन है उस की सबसे बड़ी सिंबल है। वो सनी लियोन इस चीज़ को बाहर लेके लाके रख देती हैं कि हमारे देश में हम सेक्स के बारे में सोचेंगे भी, ऑब्सेस भी करेंगे, हम उनको गूगल पे सर्च भी करेंगे, उनकी पॉर्न भी देखेंगे, पर भैया हमसे बात मत करो सेक्स के बारे में, हम खुले में कभी बात नहीं करना चाहते उसके बारे में।
तभी वहाँ एक दंपत्ति अपने एक साल के बच्चे के साथ आ जाते हैं और आदमी सनी लियोन के साथ फोटो लेने के लिए अपना फोन निकालता है।
या इतने करोड़ों लोग आजकल फोन देखते ही हैं, तो इसमें इतना हेजिटेट की क्या बात है?
तो आपको लगता है कि वो आइकन हो सकती हैं यंग लोगों के लिए?
हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकती।
लेकिन सनी जानती हैं कि उनके बारे में राय बटी हुई है और कई लोग उन्हें युवा वर्ग पर बुरा प्रभाव मानते हैं, इसीलिए जब उनसे पॉर्न की तरफ भारत के रवैये पर बात की जाए तो वो बहुत नपातुला जवाब देती हैं, जैसा हाल में हुआ जब मैंने उनसे बात की।
इंडिया में क्या अडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री होना चाहिए?
आई थिंक दैट इट्स अ गवर्नमेंट चॉइस व्हेदर दैट शुड हैपन और नॉट, नॉट माय चॉइस एट ऑल।
पर क्योंकि आपने उसमें काम किया है अमेरिका में, एक सोसाइटी पर ऐसी इंडस्ट्री का होना या इस ओपननेस का होना ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए और बनाने के लिए, उससे क्या फर्क पड़ता है?
माय ओपिनियंस ऑफ दैट इंडस्ट्री शुड नॉट बी समबडी एल्सस ओपिनियंस।
इस पर मेरी सोच क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे माँ बाप ने मुझे एक आज़ाद ख्याल लड़की की तरह बड़ा किया। मेरे फैसले सिर्फ मेरे हैं, वो किसी और पर थोपे नहीं जा सकते। भारत के लिए क्या सही है, ये फैसला सरकार और जनता को करना होगा।
लेकिन कई लोग हैं जिनकी जिंदगी में पॉर्न एक सकारात्मक अनुभव के तौर पर भी रहा। पुणे में रहने वाले एंडी बारवे फैशन पर लिखते हैं और डिजाइनिंग भी करते हैं। अपनी जिंदगी में उन्होंने कई समलैंगिक संबंध बनाए और कहते हैं कि पॉर्न ने इसमें उनकी मदद की।
I wouldn't say discover my sexuality, I would say discover...
मैं ये नहीं कहूंगा कि पॉर्न ने मुझे ये समझने में मदद की कि मैं गे हूँ, पर हाँ सेक्स समझने में जरूर मदद की, क्या क्या किया जा सकता है, अपने अनुभव और बेहतर और खुशनुमा बनाए जा सकते हैं, और ये मुझे पसंद भी आया, काफी पसंद।
पर फिर एंडी को ऐसे पॉर्न की लत लग गई जो हिंसा दिखाता था।
There was a categorization of double X and triple X, and when I found that out, my curiosity kind of...
मुझे पता चला कि डबल एक्स और ट्रिपल एक्स भी कोई श्रेणी होती है, और कौतूहल में मैं और देखता चला गया। अब जब मैं सोचता हूँ तो जो मैं देख रहा था वो बहुत घिनौना था, 50 शेड्स ऑफ ग्रे से भी कई गुना ज्यादा।
I saw myself getting really angry. I saw myself in life.
पॉर्न न देख पाता तो मैं काफी नाराज और बेचैन हो जाता था। असल जिंदगी में सेक्स से मेरी चाहत बदल गई। मुझे लगा सेक्स ऐसे ही किया जाता है। मैं पॉर्न स्टार होने की कल्पना करता। खूबसूरती के पैमाने भी बदले। मुझे लगा मुझे वर्जिश करने की जरूरत है। इस सबसे मेरे रिश्तों पर भी बुरा असर पड़ा।
एंडी अपने रिश्तों में और हिंसक खतरनाक तरीके आजमाने लगे। फिर एक दिन
The whole night for me was a blur. I remember bits and pieces of it. I can't entirely...
वो पूरी रात मेरे दिमाग में एक धुंधले सपने की तरह है। कुछ कुछ हिस्से याद हैं, पर मैं जानता हूँ कि कुछ बहुत बुरा हुआ उस रात, क्योंकि जब मैं उठा तो खून निकल रहा था, बहुत खराब महसूस हो रहा था। मैं बस वहाँ से भाग आया।
इसके बाद एंडी बीमार भी हो गए और वहीं से आत्म मंथन का सिलसिला शुरू हुआ। अब उनकी लत छूट गई है, पर एंडी अब भी सॉफ्ट पॉर्न देखते हैं उन्हें नहीं लगता कि हिंसक पॉर्न को बैन करना सही रास्ता है।
I'm not saying go all out and make porn very accessible and copy the West exactly.
मैं ये नहीं कह रहा कि हम पश्चिमी संस्कृति की तरह पॉर्न बनाने लगे, क्योंकि पता नहीं उसका क्या असर हो, लेकिन इतना तय है कि हमें इसके बारे में बात तो शुरू करनी चाहिए।
तन से किया, कभी मन से किया, कभी फन से किया।
अच्छा, फन से भी करते हैं।
ये गाना वैसी ही बातचीत की शुरुआत की कोशिश है जिसकी ओर एंडी ने इशारा किया। ये पॉर्न की नहीं, प्यार, सेक्स और मर्जी की बात करता है। गीत का नाम ही है इश्क के गार्डन में मर्जी है मिनिमम, क्योंकि सेक्स हिंसा का रूप तभी लेता है जब वो मर्जी से ना किया गया हो।
सखी जो भी किया, हम जाने मन से किया, हर जाने मन से किया, और जाने मन से किया।
ये गीत बनाया है पारमिता वोहरा ने। वो एजेंट्स ऑफ इश्क नाम की वेबसाइट चलाती हैं, जिसे उन्होंने सेक्स के बारे में खुली और स्वस्थ बातचीत की जगह की तरह विकसित किया है।
कंसेंट इज नॉट एज सिंपल एज यस मींस यस एंड नो मींस नो, ऑल्दो बॉयल डाउन टू बेसिक्स इट इज।
मर्जी दरअसल इतनी आसानी नहीं होती कि हाँ का मतलब हाँ है और ना का मतलब ना। मर्जी का मतलब तो हाँ और ना ही है, पर असल जिंदगी में ये एक लंबे समय तक अपना मन बनाने की प्रक्रिया हो सकती है। आप किसी को पसंद करते हैं, पर आप नहीं जानते वो किस तरह की चाहत है, और वो पता नहीं हाँ में भी बदल सकता है और ना में भी। आपको ये समझने के लिए वक्त देना होगा।
तो पारमिता देश भर से अलग अलग आर्थिक परिस्थितियों से आने वाले अलग लैंगिकता के लोगों के अनुभव इकट्ठा करती हैं, गाने, वीडियो और पॉडकास्ट अपनी वेबसाइट पर डालती हैं, और इस सब का मकसद है सेक्स पर खुली बातचीत को बढ़ावा देना।
फैक्ट रिमेन्स दैट इंडिया हैज ऑलवेज हैड अ कॉम्प्लेक्स सेक्सुअल कल्चर।
भारत की संस्कृति का सेक्स के साथ बहुत जटिल रिश्ता रहा है। हमें ना तो सेक्स एजुकेशन मिली है, ना बड़े होते हुए हमने सेक्स के बारे में वयस्कों के बीच आम बातचीत होते देखी है। हमारी बदकिस्मती ये है कि जब हम ब्रितानी शासन के तहत थे, वो वही वक्त था जब शरीर और सेक्सुअलिटी के बारे में बातचीत को दबाया जा रहा था, मर्दों का औरतों के शरीर पर हक होने जैसी सोच को बढ़ावा मिल रहा था। ये हमारी संस्कृति नहीं थी, पर अब हो गई है।
तकनीक अगर पूरी तरह मदद करने में नाकाम है, तो शायद सोच बदलने के प्रयास ही ज्यादा कारगर हों। पुणे के एक निम्न मध्यम वर्गीय इलाके के कुछ लड़के यहाँ एक वर्कशॉप में हिस्सा ले रहे हैं। 15-16 साल के इन लड़कों से बात कर रहे हैं इक्वल कम्युनिटी फाउंडेशन के विजय।
हम जब पूछते हैं उनको, आप इस तरह का कोई पढ़ाता है क्या, आपको कोई जानकारी देता है क्या इस तरह से, वो बोलते हैं इस तरह के हमारे जानकारी नहीं दिए जाते स्कूल में, पर अलग अलग संस्थाएं आती है पर वो HIV तक ही सीमित रहते हैं या लाइफ स्किल के बारे में उनको पढ़ाते हैं, पर सेक्स एजुकेशन के ऊपर कोई भी उनको सिखाता नहीं।
जब वो आपसे बात करते हैं तो क्या बढ़ने के से जुड़ी जो भी उनकी डाउट्स हैं, कंसर्न्स हैं, तो क्या उसमें वो पोर्नोग्राफी देखने के बारे में, फिल्में, मैगजीन्स, इस तरह की चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं?
हाँ, वो उनके मन में लैंगिकता को लेकर बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। हम उनके साथ एक ऐसा सेशन भी लेते हैं जो मन में लिखे हुए जो बच्चे बोल नहीं सकते वो अपना प्रश्न पूछ कर हमें चिट्ठी में दे सकते हैं, तो उसमें बहुत सारे चीज़ें वो बताते हैं हमको कि जिस तरह के जो आपने जिस तरह से बताया कि जो पोर्नोग्राफिक फिल्म्स के उसमें जो दिखाया जाता है या अलग अलग पिक्चर्स या मैगजीन के थ्रू जो देखते हैं उनके बारे में वो अवेयर नहीं रहते, वो सच मानने लगते, पर हम उसके पीछे की उसकी धारणा क्या है और उन्होंने उस बारे में जो देखा है उसमें गलत क्या है, इसके बारे में खाली कंपेयर उनको बताते।
इक्वल कम्युनिटी फाउंडेशन की वर्कशॉप्स में बढ़ती उम्र के कई मसलों पर बात होती है, खासतौर पर रोज़मर्रा की चीज़ों के बारे में, जैसे घर का काम किसे करना चाहिए, लड़कियों को शादी के बारे में खुद फैसले लेने देना चाहिए, उनकी तरफ किस तरह का बर्ताव सही है, कैसे लड़कियां अपनी तरफ होने वाली हिंसा के लिए जिम्मेदार नहीं है वगैरह।
और जो यहाँ पे हिंसा भेदभाव होती है वो सर पूरा बंद होने चाहिए।
पर सोच बदलना आसान नहीं।
अभी एक बच्चा था, एक बार वो बाहर ही अपने बर्तन मांज रहा था, तभी उन्होंने घर जो उसके नेबर थे चाचा, अरे तू क्यों कर रहा है, घर में इतने दोन बेटियां हैं, बहनें तेरे, अब तो तुम्हारे ऊपर आया गया है क्या, तो वो आके तुरंत ही आकर क्वेश्चन पूछा उसने, सर ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, मैं तो करना चाहता हूँ, पर जब हम बच्चों के बोलते हैं इसके ऊपर ही आपको डटे रहना है, क्योंकि इसके ऊपर कभी भी उन्होंने बताया नहीं, अरे हमारे घर में सुबह से लेकर शाम तक अपनी माँ इतने सारे काम करती है, तो उसमें जाकर कभी तुमने अपने माँ को या बहन को बोला क्या, आप इतने काम करते थके हुए हो बेटो, ये दोस्त लफ्ज भी बहुत बड़े होते हैं उनके लिए। तो फिर आप उसमें से हाथ बटाओगे तो ये कितना बड़ा आपका चेंज होगा।
साल भर चलने वाली इन वर्कशॉप से कुछ बदलाव तो आ रहा है। क्षितिज और फेलिक्स दोनों 15 साल के हैं।
पहले मैं घर काम नहीं करे जो माझी बहन पण शाळेला मॅथ्स वर्गात होती।
मुझे हमेशा लगता था कि औरत को ही रसोई में काम करना चाहिए, पर अब मुझे समझ आया कि मुझे भी घर का काम करना चाहिए ताकि मेरी बहन के पास घर से बाहर जाकर खेलने का वक्त हो।
पहले तो मैं झगड़े करने का, और मेरे दोस्त है ना वो लड़कियों को मारने के, पहले उनको देख के मेरे को भी एक बार ऐसा मन हुआ था उनको मारूं। ये क्लास में आया तो मेरे को समझा कि उनको मारना नहीं चाहिए, और जब उसकी मंजूरी हो मतलब उसको पूछे ना, उसने हाँ बोली तो कुछ नहीं, पर वो नहीं बोली फिर भी हमने सीटी मारा। ये क्या, वो पहले दिन उसको सीटी मारे, वो आके बोली मत कर, फिर भी किया तो वो हिंसा है। अगर वो बोली कर मतलब तू मेरे साथ फ्रेंडली रह सकता है तो वो हिंसा नहीं।
एक विशाल समस्या से निपटने के लिए ये छोटी कोशिशें कितनी कारगर हो सकती हैं? मोबाइल फोन पर यौन हिंसा से जुड़ी सामग्री के बांटे जाने को रोकने के लिए हमें अपनी कमान से कई तीर दागने होंगे। तकनीक, सेक्स एजुकेशन, खुली बातचीत, ये सब साथ करना होगा ताकि औरतों की तरफ मूलभूत सोच में परिवर्तन आए। फिर उसकी शुरुआत चाहे घर के काम में हाथ बटाने या हिंसा की सही परिभाषा समझने से ही क्यों ना हो।